ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारी दुनिया को सचमुच आकार देता है, इंजीनियरिंग।
हाँ, इंजीनियरिंग, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं ना।
बिल्कुल, हम इसे सिर्फ पुल, सड़कें या गैजेट्स बनाने के विज्ञान के तौर पर नहीं देखेंगे।
हम कोशिश करेंगे डेविड ब्लॉकली के नजरिए से इसे समझने की, इंजीनियरिंग का गहरा मतलब क्या है, उसका असली मकसद, उसकी भूमिका।
हाँ, खासकर उनकी एक किताब है इंजीनियरिंग अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन,
उसके जरिए।
सही, क्योंकि ब्लॉकली मानते हैं कि इंजीनियरिंग सिर्फ गणित और विज्ञान का खेल नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये सोचने का एक तरीका है।
हाँ, समस्याओं को हल करने का,
ये दुनिया में बदलाव लाने का एक खास, मतलब रचनात्मक तरीका है।
और आज के जमाने में जब तकनीक हमारी जिंदगी में इतनी घुस गई है,
हर पहलू में,
तो ये समझना कि इंजीनियरिंग असल में क्या है, इसका असली रोल क्या है, लक्ष्य क्या है, ये हम सबके लिए जरूरी हो गया है।
बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है, हम सब उस दुनिया में रहते हैं जिसे इंजीनियरिंग ने बनाया है।
सही बात है।
तो ये जानना दिलचस्प है कि ये शक्ति कैसे काम करती है और इसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए।
तो चलिए ब्लॉकली के विचारों की इस दुनिया में उतरते हैं।
तो सबसे पहले, ये डेविड ब्लॉकली हैं कौन जिनके विचारों पर हम ये गहरी बातचीत कर रहे हैं?
हाँ, बताइए जरा इनके बारे में।
वो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग के एमेरिटस प्रोफेसर हैं।
एमेरिटस प्रोफेसर यानी काफी लंबा अनुभव,
दशकों का। और सिर्फ इंजीनियरिंग करने का ही नहीं, बल्कि इसके पीछे जो दर्शन है, जो सोचने का तरीका है, उस पर भी विचार करने का।
अच्छा, और यही बात उन्हें खास बनाती है ना? बिल्कुल, मेरा मतलब है, एक तरफ तो उन्होंने वो काम किए जो बिल्कुल जमीनी है, पुलों की सुरक्षा, इमारतों के ढांचे,
हाँ, बहुत प्रैक्टिकल काम।
और दूसरी तरफ वो ये भी गहराई से सोच रहे हैं कि भाई इंजीनियर असल में फैसले कैसे लेते हैं, खासकर जब पूरी जानकारी ना हो, जब अनिश्चितता हो,
सही।
और उनके डिजाइन का समाज पर क्या असर पड़ता है, ये सिर्फ कैसे बनाएं का सवाल नहीं रह जाता फिर।
हाँ, ये क्यों बनाए और किसके लिए बनाए का भी सवाल बन जाता है। उसका रोल क्या है, उसका गोल क्या है?
सही कहा।
उनका नजरिया इसलिए भी अनूठा है क्योंकि वो सिर्फ बाहर से देखने वाले अकादमिक नहीं हैं।
नहीं,
वो इसे अंदर से जानते हैं, एक प्रैक्टिशनर के तौर पर।
अच्छा,
वो उन छिपी हुई प्रक्रियाओं पर रोशनी डालते हैं जिन्हें इंजीनियर रोजमर्रा के काम में शायद मान के ही चलते हैं।
जैसे
जैसे लगातार डिजाइन को बेहतर बनाना, या फिर सीमित संसाधन होते हैं, बजट होता है, उन बाधाओं के बीच काम करना।
हाँ, ये तो होता ही है।
या फिर जोखिम का अंदाजा लगाना और उसे संभालना। वो इंजीनियरिंग के क्या के साथ साथ उसके क्यों और कैसे पर, मतलब उसकी भूमिका और लक्ष्य पर बहुत जोर देते हैं।
तो चलिए उनकी किताब पर आते हैं, इंजीनियरिंग अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसमें ब्लॉकली सबसे पहले किस चीज को चुनौती देते हैं?
वो सबसे पहले उस आम सोच को चुनौती देते हैं कि इंजीनियरिंग बस अप्लाइड साइंस है।
अच्छा, कि मतलब विज्ञान ने जो खोजा, इंजीनियर ने उसे इस्तेमाल कर लिया बस।
हाँ, वो कहते हैं नहीं, ये मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है।
तो क्या है उनका मुख्य तर्क?
उनका मुख्य तर्क ये है कि इंजीनियरिंग बुनियादी तौर पर एक रचनात्मक प्रक्रिया है,
क्रिएटिव।
हाँ, और मानवीय है, सामाजिक है। इसका काम सिर्फ विज्ञान के नियमों का पालन करना नहीं है।
तो फिर क्या है?
इसका काम है इंसानों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए भौतिक दुनिया को बदलना।
बदलना यानी कुछ नया बनाना।
बिल्कुल, कुछ नया बनाना जिसका एक खास मकसद हो, एक लक्ष्य हो।
ये बात अहम है। किताब का सार शायद यही है कि इंजीनियरिंग का मतलब कोई पहले से तय सही जवाब ढूंढना नहीं है,
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि असल दुनिया की जो जटिलताएं हैं, अनिश्चितताएं हैं,
संसाधन सीमित होते हैं,
हाँ, और कभी कभी तो लक्ष्य भी आपस में टकराते हैं,
सही,
उन सबके बीच सबसे बेहतर जो संभव हो वो समाधान गढ़ना है, बनाना है।
तो ये एक तरह की कला हुई बाधाओं के बीच रास्ता निकालने की।
हाँ, कह सकते हैं एक कला जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, इंसानों की भलाई।
और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग को सिर्फ नंबर और कैलकुलेशन तक सीमित समझें
तो
खतरा है, हम उसके असली स्वभाव को, उसकी असली रोल को समझने से चूक जाएंगे।
अच्छा, कैसे?
क्योंकि ऐसा करने से जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में समझदारी लगती है, जो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, पूरे सिस्टम को देखने की जरूरत होती है।
हाँ,
और सबसे जरूरी, रचनात्मकता, ये सब नजरअंदाज हो जाते हैं।
और यही चीजें तो बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए चाहिए होती है, है ना?
बिल्कुल, चाहे वो साफ पानी पहुंचाने की समस्या हो या ट्रैफिक जैम कम करने की, इनके लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान काफी नहीं है।
और इसी पूरी सोच को, मतलब होलिस्टिक अप्रोच को समझाने के लिए वो एक तरीका भी बताते हैं।
हाँ, एक फ्रेमवर्क जिसे वो कहते हैं 7 वॉट्स।
7 वॉट्स, ये क्या चीज है?
ये किसी भी चीज को, चाहे वो छोटी सी पेंसिल हो या एक बड़ा पावर प्लांट, उसे पूरी तरह समझने का एक तरीका है।
अच्छा, सिर्फ उसके पुर्जों को नहीं?
नहीं, उसके पुर्जों से आगे जाकर उसका उद्देश्य क्या है, वो किस संदर्भ में काम करती है और बड़े सिस्टम में उसकी भूमिका क्या है, ये सब समझने में मदद करता है।
तो ये तो सीधे सीधे इंजीनियरिंग के रोल और गोल से जुड़ गया ना?
हाँ, बिल्कुल।
तो ये जो नई परिभाषा है इंजीनियरिंग की, कि ये सिर्फ विज्ञान का इस्तेमाल नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण बदलाव लाने की एक रचनात्मक प्रक्रिया है, इसे थोड़ा और खोलते हैं।
हाँ, ब्लॉकली कहते हैं कि विज्ञान का काम है समझना कि दुनिया जैसी है वो वैसी क्यों है, वो राज खोलता है।
अच्छा, मतलब मौजूदा चीजों को समझना।
सही, लेकिन इंजीनियरिंग का काम है वो दुनिया बनाना जो हम चाहते हैं,
जो पहले नहीं थी।
हाँ, कुछ ऐसा बनाना जो पहले नहीं था, किसी खास मकसद को, किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए।
और इसी मकसद, इसी क्यों को पकड़ने में मदद करता है उनका साथ क्या फ्रेमवर्क?
बिल्कुल, ये किसी भी सिस्टम को, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसे समग्र रूप से देखने का तरीका है, एक पूरी तस्वीर।
तो क्या है ये 7 सवाल?
ये 7 बुनियादी सवाल हैं।
यह असल में क्या है? इसकी पहचान, इसका घोषित उद्देश्य क्या है?
ठीक है।
दूसरा, यह क्या करता है? इसका मुख्य काम, फंक्शन क्या है?
ओके।
तीसरा, इसके हिस्से क्या है? इसकी बनावट, इसके पुर्जे क्या हैं? चौथा, इसके हिस्से क्या करते हैं? उन अलग अलग पुर्जों का अपना अपना काम क्या है?
ठीक।
पांचवा, ये किस बड़ी चीज का हिस्सा है? मतलब किस संदर्भ में काम करता है, किस बड़े सिस्टम में फिट होता है?
अच्छा, उसका कॉन्टेक्स्ट।
हाँ। छठा, ये उस बड़े सिस्टम में क्या करता है? उस बड़े सिस्टम में इसकी भूमिका क्या है? ये दूसरों से कैसे जुड़ता है?
इंट्रैक्शन, मतलब।
सही। और सातवां, जो सबसे गहरा सवाल है, मानवीय नजरिए से इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? समाज के लिए, लोगों के लिए, इसका असली, मतलब इसका अंतिम मूल्य क्या है?
सुनने में तो ये काफी विस्तृत लग रहा है, क्या इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, एक साधारण सी पेपर क्लिप ले लीजिए।
पेपर क्लिप, ठीक है।
तो पहला सवाल क्या है? कागज जोड़ने वाला एक तार का टुकड़ा।
सिंपल।
दूसरा, क्या करता है? कागजों को एक साथ रखता है।
ठीक।
तीसरा, हिस्से क्या है? खास तरह से मुड़ा हुआ एक तार।
हाँ।
चौथा, हिस्से क्या करते हैं? तार का मुड़ा हुआ आकार तनाव पैदा करता है जो कागज को पकड़ता है।
ओके।
पांचवा, किसका हिस्सा है? ऑफिस की स्टेशनरी का, दस्तावेजों को संभालने की व्यवस्था का। छठा, उस व्यवस्था में क्या करता है? कागजों को तरतीब से रखने में मदद करता है।
सही।
और सातवां, अंतिम उद्देश्य क्या है? जानकारी को आसानी से उपलब्ध कराना, चीजों को व्यवस्थित रखना, शायद काम को ज्यादा कुशल बनाना।
अच्छा, तो ये 7 सवाल किसी भी चीज पर लागू हो सकते हैं, पुल पर, फोन पर।
हाँ, शहर की पानी सप्लाई व्यवस्था पर भी। ये हमें सिर्फ पुर्जों से हटकर पूरी तस्वीर देखने में मदद करता है कि कोई चीज क्यों बनाई गई है, उसका असली रोल और लक्ष्य क्या है।
तो ये 7 क्या हमें सीधे सिस्टम थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं?
बिल्कुल, व्यवस्था सोच ब्लॉकले के लिए ये इंजीनियरिंग की आत्मा है।
आत्मा?
अच्छा। हाँ,
क्योंकि इंजीनियर सिर्फ अलग अलग चीजें नहीं बनाते, वो असल में जटिल सिस्टम डिजाइन करते हैं और उन्हें चलाते हैं,
जैसे ट्रैफिक सिस्टम, पावर ग्रिड, इंटरनेट।
सही।
और इन सिस्टम्स को समझना उनके काम का, उनके रोल का केंद्र है।
उन्होंने ढेर और सिस्टम का फर्क भी समझाया है ना?
हाँ, बहुत अच्छे से। जैसे ईंटों का ढेर है, एक ईंट निकाल लो, वो ढेर ही रहेगा,
ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं, लेकिन अगर उन्हीं ईंटों से एक मेहराब, मतलब आर्च बनाया है, तो वो एक सिस्टम है। उसमें हर ईंट की जगह उसका दूसरी ईंटों से रिश्ता, ये बहुत जरूरी है।
एक ईंट हटी और
पूरा मेहराब गिर सकता है। सिस्टम में हिस्सों के आपसी संबंध ही उसे उसका खास गुण देते हैं, उसकी काम करने की क्षमता देते हैं। उस सिस्टम का एक लक्ष्य होता है वजन उठाना,
और यहीं से वो इमर्जेंस वाली बात आती है।
हाँ, इमर्जेंस यानी उभरना। सिस्टम में अक्सर ऐसे गुण या व्यवहार दिखते हैं जो उसके अलग अलग हिस्सों में अकेले नहीं होते।
जैसे?
जैसे पानी का अणु H2O खुद गीला नहीं होता।
अच्छा।
हाँ, लेकिन बहुत सारे अणु मिलकर पानी बनाते हैं जिसका उभरता हुआ गुण है गीलापन।
वाह, ये तो मजेदार है।
या फिर एक कार का कोई पुर्जा ट्रैफिक जाम नहीं बनाता।
नहीं,
रोल यही होता है कि वो ऐसे सिस्टम डिजाइन करे जिनसे वो खास गुण उभरे जो चाहिए,
मतलब जो उनका लक्ष्य है।
हाँ, जैसे एक पुल जो भारी ट्रैफिक संभाल सके, या एक सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करने में आसान लगे, उनका लक्ष्य इन वांछित गुणों को हासिल करना होता है।
और इन सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए वो फीडबैक लूप्स को भी समझते हैं।
हाँ, बहुत जरूरी है ये समझना कि कैसे सिस्टम से मिलने वाली जानकारी वापस उसी सिस्टम को प्रभावित करती है
और उसे स्थिर या अस्थिर बनाती है।
बिल्कुल, जैसे घर का थर्मोस्टेट।
हाँ।
तापमान गिरा तो हीटिंग चालू, बढ़ा तो बंद। ये नेगेटिव फीडबैक है, स्थिरता लाता है।
ठीक है।
और कभी कभी वो माइक वाली आवाज होती है ना स्पीकर के पास ले जाने पर, सीटी जैसी।
हाँ हाँ, वो तेज होती जाती है।
वो पॉजिटिव फीडबैक है और स्थिरता लाता है। इंजीनियर इन लूप्स को ध्यान में रखकर ही सिस्टम्स डिजाइन करते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें।
और जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं तो फिर असल दुनिया की जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी सामने आती है।
हाँ, ब्लॉकली कहते हैं कि असल इंजीनियरिंग की चुनौतियां स्कूल के सवालों जैसी सीधी नहीं होती।
बिल्कुल, वो टेम यानी सीधी साधी और विकेड यानी पेचीदा समस्याओं में फर्क करते हैं।
हाँ, टेम प्रॉब्लम जैसे शतरंज का कोई सवाल, नियम साफ, लक्ष्य स्पष्ट, जीतना, और हल भी होता है।
ठीक।
लेकिन विकेड प्रॉब्लम जैसे किसी बड़े शहर के ट्रैफिक को सुधारना
या गरीबी कम करना,
जलवायु परिवर्तन,
हाँ, ये बहुत पेचीदा होती है। इनके लक्ष्य भी कई बार आपस में टकराते हैं।
जैसे
मान लीजिए ट्रैफिक कम करना है पर व्यापार को भी नुकसान ना हो।
मुश्किल है।
इसमें बहुत सारे अलग अलग लोग शामिल होते हैं जिनकी जरूरतें, राय, सब अलग अलग,
और कोई एक सही जवाब नहीं होता इनका। नहीं, बल्कि आप जो भी समाधान लागू करते हैं वो अक्सर समस्या को ही बदल देता है, नई मुश्किलें खड़ी कर देता है।
अरे बाप रे, तो फिर ऐसी पेचीदा समस्याओं से इंजीनियर निपटते कैसे, उनका रोल क्या होता है?
ब्लॉकली का कहना है कि यहाँ सिर्फ विश्लेषण मतलब चीजों को तोड़ तोड़ कर समझना काफी नहीं है,
जिसे रिडक्शनिज्म कहते हैं।
हाँ, आप ट्रैफिक को समझने के लिए सिर्फ एक कार की बनावट नहीं पढ़ सकते।
नहीं, उससे क्या होगा?
आपको पूरा सिस्टम देखना होगा, सड़कें, ट्रैफिक लाइटें, ड्राइवरों का व्यवहार, मौसम का असर, सब कुछ।
तो फिर विश्लेषण काफी नहीं तो क्या?
यहीं पर समझदारी भरे निर्णय मतलब जजमेंट, अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन, और अनुभव से सीखे गए नियम जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, उनका रोल आता है।
ह्यूरिस्टिक्स, ये क्या है?
ये वो अंगूठे के नियम या दिमागी शॉर्टकट हैं जो अनुभव से मिलते हैं, मुश्किल या अनिश्चित स्थितियों में फैसले लेने में मदद करते हैं।
अच्छा, जब जानकारी पूरी ना हो या हालात बहुत जटिल हों।
हाँ, तब इंजीनियर सिर्फ फॉर्मूलों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, उन्हें अपनी समझ, अपने अनुभव और कभी कभी अपनी गट फीलिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो ये कोई कमजोरी नहीं है?
नहीं, ब्लॉकली कहते हैं ये कमजोरी नहीं बल्कि जटिल दुनिया में काम करने का एक जरूरी कौशल है, खासकर जब आप ऐसे लक्ष्य का पीछा कर रहे हो जिसका रास्ता साफ न हो।
और जहाँ जटिलता और अनिश्चितता है वहाँ जोखिम का मुद्दा भी आता होगा, विश्वसनीयता, असफलता।
हाँ बिल्कुल, इंजीनियरिंग में ये मानकर चलना पड़ता है कि चीजें गलत हो सकती हैं। कोई भी डिजाइन 100% सुरक्षित नहीं हो सकता।
तो लक्ष्य क्या होता है?
लक्ष्य होता है जोखिम को कम करना।
ब्लॉकली जोखिम को कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ संभावना के तौर पर?
नहीं, वो कहते हैं जोखिम असल में दो चीजों का गुणा है।
दो चीजें कौन सी?
एक तो किसी घटना के होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी।
ठीक है।
और दूसरी, अगर वो होती है तो उसके परिणाम कितने गंभीर होंगे, सिवेरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस।
अच्छा, मतलब संभावना कम हो लेकिन परिणाम भयानक हो तो जोखिम ज्यादा।
हाँ, जैसे किसी न्यूक्लियर प्लांट में हादसा, संभावना कम पर हुई तो तबाही, जोखिम बहुत ज्यादा।
और अगर संभावना ज्यादा हो पर परिणाम मामूली हो, जैसे प्रिंटर में कागज फंसना,
तो जोखिम कम माना जाएगा।
तो फिर इंजीनियर जोखिम को मैनेज कैसे करते हैं? क्या शून्य करने की कोशिश करते हैं?
नहीं, शून्य करना तो मुमकिन नहीं। यहीं पर ALARP का सिद्धांत आता है।
ALARP, इसका क्या मतलब है?
एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल।
अच्छा, जितना व्यावहारिक रूप से संभव हो उतना कम।
बिल्कुल, जोखिम को तब तक कम करते जाना जब तक कि उसे और कम करने में लगने वाली लागत, पैसा, समय, मेहनत उससे मिलने वाले फायदे के मुकाबले बहुत ज्यादा ना हो जाए।
तो ये एक तरह का संतुलन है, और इसमें समाज की सहमति भी शामिल है कि कितना जोखिम ठीक है।
हाँ, ये लक्ष्य निर्धारित करने का एक व्यवहारिक तरीका है।
और असफलता के बारे में क्या कहते हैं ब्लॉकली, उसे कैसे देखना चाहिए?
शर्मिंदगी या नाकामी मत समझो।
तो फिर
ये सीखने का सबसे बड़ा मौका है। इसे छुपाओ मत, ईमानदारी से विश्लेषण करो ताकि वही गलती दोबारा ना हो।
तो लक्ष्य परफेक्शन नहीं, लगातार सुधार है।
बिल्कुल, और असफलता उस सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है।
उन्होंने कुछ हादसों के उदाहरण भी दिए हैं ना?
हाँ, जैसे स्कॉटलैंड में टे ब्रिज का गिरना 1879 में।
उसमें क्या हुआ था? सिर्फ डिजाइन खराब था?
नहीं, वो एक सिस्टमिक विफलता थी। खराब डिजाइन तो था ही, साथ में घटिया मटेरियल, जांच में लापरवाही, चेतावनियों को नजरअंदाज करना, ये सब शामिल था। पूरा सिस्टम ही फेल हो गया अपने लक्ष्य को पाने में।
और वो टकोमा नैरो ब्रिज जो हवा में लहराकर टूट गया था?
हाँ, अमेरिका में 1940 में। वो एक अननोन अननोन का मामला था।
अज्ञात अज्ञात मतलब?
मतलब उस समय इंजीनियर हवा के उस खास तरह के असर के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, जिसे एरो इलास्टिक फ्लटर कहते हैं। वो एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें नहीं पता है।
ओ, तो इन उदाहरणों से क्या सबक मिलता है?
यही कि इंजीनियरिंग सिर्फ तकनीक नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। इसमें लोग शामिल हैं, उनके फैसले शामिल हैं, और ये हमेशा एक खास संदर्भ में होती है।
और सुरक्षित क्या है, ये भी सिर्फ एक तकनीकी सवाल नहीं है?
नहीं, ये एक सामाजिक और नैतिक सवाल भी है। सुरक्षा के लक्ष्य को कैसे परिभाषित करें, कितना जोखिम उठाएं, यह आखिरकार समाज ही तय करता है।
तो अगर हम ब्लॉकली के इन सारे विचारों को समेटें, तो कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं, थीम्स क्या हैं?
हाँ, कई अहम बातें हैं। पहली तो यही कि इंजीनियरिंग एक गहरी मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया है।
मतलब लोगों द्वारा लोगों के लिए।
बिल्कुल, हर फैसले में मानवीय मूल्य और सामाजिक असर जुड़े होते हैं। इसका अंतिम लक्ष्य हमेशा मानवीय होता है।
और दूसरी बड़ी थीम?
सिस्टम सोच की केंद्रीय भूमिका। चीजों को अलग थलग देखने के बजाय उनके आपसी रिश्तों और पूरे सिस्टम पर उनके असर को समझना जरूरी है,
क्योंकि अनचाहे परिणाम वहीं से आते हैं।
हाँ, इंजीनियर का रोल सिर्फ पुर्जे जोड़ना नहीं, बल्कि काम करने वाले सिस्टम बनाना और उन्हें संभालना है।
और ये सोच तो शायद सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, और भी जगह काम आ सकती है।
बिल्कुल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ये सब जटिल सिस्टम ही तो है।
तीसरी थीम क्या है?
अनिश्चितता और जटिलता से निपटना। असली दुनिया की इंजीनियरिंग साफ सुथरी नहीं होती।
हाँ, वो धुंधले हालात में फैसले लेने वाली बात।
सही, इसमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ जजमेंट और इंट्यूशन भी उतने ही जरूरी हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनिश्चितता के समंदर में नाव खेनी पड़ती है।
चौथी थी मुझे खास तौर पर दिलचस्प लगी थी, बाधाएं रचनात्मकता को जन्म देती हैं।
हाँ, ये बहुत पॉजिटिव नजरिया है। सीमाएं रुकावट नहीं, प्रेरणा है।
बजट की कमी, समय का दबाव, ये सब इंजीनियरों को नए और बेहतर समाधान खोजने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, ये रचनात्मकता को दिशा देती हैं, उसे एक लक्ष्य देती हैं। जरूरत ही आविष्कार की जननी है, वो वाली बात।
और पांचवी थीम?
असफलता एक शिक्षक के रूप में। गलतियों से सीखना, उनसे सबक लेना प्रगति के लिए जरूरी है।
लक्ष्य परफेक्शन नहीं, लगातार बेहतरी।
हाँ, और असफलताएं उस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, उन्हें छिपाना नहीं चाहिए।
और छठी थीम जो आपने कहा था आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है?
इंजीनियरों की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी।
कि वो सिर्फ तकनीशियन नहीं, समाज के निर्माता हैं।
हाँ, उनके काम का, उनके डिजाइन का लोगों के जीने के तरीके पर, पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है,
तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।
बिल्कुल, भारत में देखें, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, शहर फैल रहे हैं।
हाँ।
तो ये सवाल पूछना जरूरी है कि इन प्रोजेक्ट्स का असली लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ आर्थिक विकास, या इसमें सामाजिक न्याय, पर्यावरण की सुरक्षा जैसे पहलू भी शामिल है? ब्लॉकली के हिसाब से इंजीनियर्स इन सवालों से बच नहीं सकते, ये उनके रोल का हिस्सा है।
ब्लॉकली के कुछ विचार वाकई ऐसे हैं जो उनकी पूरी सोच का निचोड़ हैं और याद रह जाते हैं।
हाँ, है ना? जैसे उनका ये कहना कि इंजीनियरिंग सिर्फ विज्ञान का अनुप्रयोग नहीं है,
यह कुछ ऐसा बनाने की कला है जो पहले कभी मौजूद नहीं था।
ये उद्देश्यपूर्ण बदलाव का एक गहरा मानवीय कार्य है। ये इंजीनियरिंग की रचनात्मक शक्ति और उसके लक्ष्य पर जोर देता है।
और वो सिस्टम वाली बात, आप एक पुल को सिर्फ एक रिविट देखकर नहीं समझ सकते।
सिस्टम का जादू उसके हिस्सों के आपसी संबंध से उभरता है। ये सिस्टम सोच और इमर्जेंस के महत्व को बताता है। कैसे हिस्सों को जोड़ने से कुछ ज्यादा बड़ा बनता है, जिसका अपना एक रोल होता है।
और बाधाओं वाली बात भी बहुत अच्छी है। बाधाएं इंजीनियरिंग रचनात्मकता पर सीमाएं नहीं है, वे नवाचार के असली चालक हैं।
हाँ, ये चुनौतियों को अवसर की तरह देखने का नजरिया देता है। कि मुश्किलें ही हमें बेहतर लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं।
असफलता पर भी उनका कहना बहुत जरूरी लगता है।
हाँ, हमें असफलता को पेशेवर अपमान के रूप में नहीं बल्कि अपने सबसे मूल्यवान शिक्षक के रूप में देखना सीखना चाहिए।
ये लगातार सीखने और सुधारने की मानसिकता है ताकि हम अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से हासिल कर सके।
और आखिर में वो जिम्मेदारी वाली बात,
हर इंजीनियरिंग निर्णय अंततः एक सामाजिक निर्णय होता है।
ये प्रभावित करता है कि लोग कैसे रहते हैं, काम करते हैं और अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं।
ये इंजीनियरों को याद दिलाता है कि उनके काम का अंतिम लक्ष्य समाज की बेहतरी होना चाहिए।
और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है?
क्या?
ब्लॉकली की ये सोच सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है।
हाँ, मतलब हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं इसे।
बिल्कुल, ये सोचने का तरीका हम सब अपनी जिंदगी में, अपने काम में अपना सकते हैं। इसका रोल और लक्ष्य सिर्फ पुल या मशीनें बनाना नहीं बल्कि समस्याओं को बेहतर ढंग से समझना और हल करना है।
ये तो बहुत काम की बात है, जैसे वो साथ किया वाला फ्रेमवर्क।
हाँ, उसे किसी भी जटिल स्थिति या फैसले को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
मान लीजिए कोई अपना करियर बदलना चाहता है।
हाँ,
कैसे लगाएगा इसे?
वो पूछ सकता है ये नया करियर असल में क्या है, इसमें रोज क्या करना होता है, इसके लिए किन स्किल्स की जरूरत है, ये किस इंडस्ट्री का हिस्सा है।
और वो सातवां सवाल, गहरे मानवीय स्तर पर।
हाँ, इससे क्या मकसद पूरा होगा? क्या सिर्फ पैसा कमाना लक्ष्य है, या संतुष्टि मिलेगी, या समाज में कोई योगदान दे पाऊंगा?
तो ये सवाल हमें बड़ी तस्वीर देखने और अपने असली लक्ष्य को पहचानने में मदद करते हैं।
बिल्कुल, अनिश्चितता में फैसले लेने का तरीका भी सीख सकते हैं।
जिंदगी में हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता है ना?
कहाँ होता है। तो बजाय किसी एक परफेक्ट प्लान के पीछे भागने के, हम ऐसे तरीके सोच सकते हैं जो ज्यादातर हालात में काम कर जाए, मजबूत हों।
रोबस्ट जिसे कहते हैं।
हाँ, और अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो नतीजा बहुत बुरा ना हो। जैसे यात्रा पर जाने से पहले मौसम देख लेना, एक एक्स्ट्रा स्वेटर रख लेना, बैकअप प्लान की तरह।
ये हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ज्यादा कामयाब बनाता है।
सही, और सिस्टम सोच ये तो हर जगह काम आती है, ऑफिस में, मोहल्ले में, देश की किसी बड़ी समस्या को समझने में।
क्यों कोई छोटा बदलाव बड़े अनचाहे नतीजे लाता है, या क्यों कोई समस्या बार बार कोशिश करने पर भी हल नहीं होती?
सिस्टम सोच हमें इन छुपे हुए कनेक्शंस और फीडबैक लूप्स को समझने में मदद करती है, ताकि हम समस्या की जड़ तक पहुंच सकें, उसके असली कारण तक।
हाँ, और शायद सबसे बढ़कर, जैसा आपने कहा, ये हमें अपने आसपास की बनी हुई दुनिया को, हमारे घर, सड़कें, फोन, बिजली, एक नई नजर से देखना सिखाता है।
प्रशंसा की नजर से, ये सिर्फ बेजान चीजें नहीं हैं।
ये अनगिनत इंसानी फैसलों का नतीजा है, डिजाइन की चुनौतियों का, सुरक्षा और लागत के बीच समझौतों का,
जटिलता को साधने की कोशिशों का, और ये सब किसी न किसी मानवीय लक्ष्य को, किसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं।
तो आज की इस पूरी बातचीत से मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि इंजीनियरिंग असल में कितनी रचनात्मक, कितनी मानवीय और कितनी ज्यादा समझदारी वाली प्रक्रिया है। ये सिर्फ नंबरों और फॉर्मूलों का खेल नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में, अनिश्चितता के बीच बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए सोच समझकर फैसले लेने की कला है। इसका रोल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना है।
और मेरे लिए सिस्टम सोच की ताकत सबसे अहम है। ये समझना कि चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, हमारे कामों के अनजाने परिणाम क्या हो सकते हैं, और किसी भी सिस्टम का असली मकसद क्या है।
हाँ,
ये सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं, हम सबके लिए आज की इस जटिल दुनिया को समझने और उसमें सही तरीके से काम करने का एक बेहद जरूरी हुनर है।
ये हमें अपने लक्ष्यों को ज्यादा असरदार तरीके से पाने में मदद करता है।
हाँ, और अनचाहे नतीजों से बचने में भी। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही लागू होता है जितना बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।